नमस्कृत्या नरम चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम सुबह के बुधवार के कार्यक्रम में श्रीमद् भागवत से पढ़ रहे हैं, 11वां स्कंद, 11वां अध्याय और श्लोक क्रमांक 12 और 13। वो खाली मैं दोहराऊंगा, प्रकृतिस्थो अपि असम असंशक प्रकृतिस्थोपि असंशक्तो यथाखं सविता नीलः वैशारद्ये क्षणसंग सीतया चिन्न संशयः प्रतिबुद्ध इवा स्वप्नान् नानावताद विनिवर्तते। इसका अभी अंग्रेजी में लिखा है, मैं उसको हिंदी में आपको अनुवाद बताता हूं। आकाश, ये सभी ग्रहों का रेस्टिंग प्लेस यानी विश्राम का स्थल है। आकाश में सभी ग्रह गोल विराज रहते हैं, विराजमान रहते हैं, लेकिन फिर भी आकाश कभी भी उन ग्रह गोलों में मिक्स नहीं होता है। आकाश आकाश रहता है, ग्रह गोल रहते हैं, उनका आकाश पर कोई परिणाम नहीं होता है। उसी तरह से आकाश उसमें एंटैंगल्ड यानी आकाश उसमें अपने आप को क्या कहते हैं उसको, सम्मिलित नहीं करता है, उससे प्रभावित नहीं होता है। उसी तरह से सूर्य जो है उसका प्रतिबिंब रिफ्लेक्शन तालाब में गिरता है, कुएं में गिरता है, समुद्र में गिरता है, लेकिन तालाब समुद्र और नदी या कुआं किसी से भी वो लिप्त नहीं होता है, आसक्त नहीं होता है। उसी तरह से हवा सब जगह बहती है और अनंत प्रकार के सुगंध दुर्गंध जो है वो लेते जाती रहती है यहां से वहां, लेकिन फिर भी उन सुगंध या दुर्गंध से हवा आसक्त या लिप्त नहीं होती। उसी तरह से जो आत्म साक्षात्कारी भक्त है भगवान का, वो भौतिक दुनिया से पूरी तरह से विरक्त रहता है, शरीर से विरक्त रहता है और शरीर से संबंधित जो भौतिक दुनिया है उससे भी वो विरक्त रहता है। ही इज लाइक अ पर्सन हुज अवेकंड, वो ऐसा व्यक्ति है जो जागृत हो चुका है और स्वप्नमय भ्रम से मुक्त हो चुका है, अराइजन फ्रॉम अ ड्रीम ऑफ इल्यूजन, विथ एक्सपर्ट विजन शार्पन्ड बाय डिटैचमेंट, उस दृष्टि से जो विरक्ति से प्रभावित है, जो विरक्ति से तेज हो गई है, विरक्ति के होने से वो दृष्टि बहुत सत्य के आधार पर है और तेज भी हो गई है, ऐसे दृष्टि से वो आत्म साक्षात्कार जीव सारे शंकाओं को संशयों को काट देता है, उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। किस प्रकार से आत्मज्ञान के आधार पर, जो आत्मज्ञान उसको आधारित प्राप्त है उसके वजह से वो सारे संशय सारे भ्रम हाँ सबको तोड़ देता है माया को, और फिर भौतिक दुनिया में जितने प्रकार के भोग उपलब्ध है, जितने प्रकार के व्यवस्था उपलब्ध है, अट्रैक्शंस उपलब्ध है, वो सबको तोड़ देता है और अपने आप को उनसे अलग कर देता है। जैसे सूरज सॉरी आकाश में सब ग्रह तारे बसे हुए हैं लेकिन सूरज उससे अलग रहता है, वैसे ही ये व्यक्ति दुनिया में रहता है, दुनिया के इर्द गिर्द रहता है, सभी वस्तुओं के बीच में रहता है, सभी लोगों के बीच में रहता है लेकिन उनमें लिप्त नहीं होता। कारण क्या है उसका? विरक्ति। विरक्ति क्यों है? आत्म साक्षात्कार का ज्ञान प्राप्त करने की वजह से है। तात्पर्य में लिखा गया है कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि आत्म साक्षात्कारी जीव अपने आत्मा के अनुभूति के आधार पर बाय एक्सपीरियंस ऑफ द स्पिरिचुअल सेल्फ ये सारे संशयों को काट देता है। परम भगवान श्री कृष्ण है और उनके अलावा कोई भी अस्तित्व मुमकिन नहीं है। है क्या मुमकिन? भगवान पर ही सारा अस्तित्व मुमकिन है, आधारित है, निर्भर है। प्रकृतिस्थो अपि असंशक्तः, जैसे आकाश सूर्य और वायु, उसी तरह से आत्म साक्षात्कारी जीव किसी में लिप्त नहीं होता, चाहे वो भौतिक दुनिया में ही जी रहा हो। नानात्व यानी कि मटेरियल वैरायटी, बोलते ना नाना प्रकार के फूल, नाना प्रकार के कपड़े, ऐसे नानात्व मतलब वैरायटी। नानात्व और मटेरियल वैरायटी रिफर्स टू वंस मटेरियल बॉडी, द बॉडीज ऑफ अदर्स एंड अनलिमिटेड पैराफर्नेलिया फॉर बॉडीली सेंस ग्रेटिफिकेशन बोथ फिजिकल एंड मेंटल। तो नानात्व का मतलब क्या है कि अनेक प्रकार के शरीर है, आपका शरीर अलग है, मेरा अलग है, इन सब लोगों का अलग है, कोई पुरुष है कोई स्त्री है। फिर उसके अलावा क्या है कि इन शरीरों के संबंध में बहुत सारी वस्तुएं भी है, आपका पीला शर्ट है, मेरा गुलाबी शर्ट है, आपका वाइट शर्ट है, और आपकी एक पत्नी है, उस किसी दूसरे की और पत्नी है, तो शरीर संबंधित बहुत वस्तुएं भी है और अनलिमिटेड अनंत प्रकार के भोग वस्तु भी है यहाँ पर हर एक वस्तु के व्यक्ति के लिए। आपके लिए शायद पैसा भोग वस्तु है, उसके लिए शायद पद भोग वस्तु है, और किसी के लिए सुंदर स्त्री भोग वस्तु है। तो नाना प्रकार के नानात्व नाना प्रकार के भोग वस्तुएं अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग इस प्रकार से दुनिया में मौजूद है। लेकिन कृष्ण भावना को जागृत करने से इन सारे भ्रमों से इल्यूजरी सेंस ग्रेटिफिकेशन जो भ्रामक कल्पना है इंद्रिय भोग की इससे व्यक्ति मुक्त हो जाता है and becomes absorbed in progressive realization of the soul situated in the body, और आत्ममय हो जाता है, आत्ममग्न हो जाता है। किसमें? किस प्रक्रिया में? आत्म साक्षात्कार के प्रक्रिया में, जो प्रगतिशील है, प्रोग्रेसिव है, ऐसे प्रगतिशील प्रक्रिया में वो मग्न हो जाता है। उसके वजह से वो ये सब कुछ छोड़ सकता है। As revealed in the example of the two birds in the tree, both individual soul and the personality of Godhead are completely separate from the gross and subtle material bodies. जैसे कहा गया शास्त्रों में कि दो पक्षी हैं, एक परमात्मा है एक आत्मा है, और परमात्मा आत्मा को देख रहा है, अवलोकन कर रहा है उसका, आत्मा उस पेड़ के जितने फल है उसको भोगने के लिए प्रयास कर रहा है और परमात्मा उसको देख रहे हैं। If one turns one's face to the Lord, recognizing one's eternal dependence on Him, there will be no further suffering or anxiety, even though one is still situated within the body or material world. जिस दिन जिस वक्त आत्मा परमात्मा की ओर देखता है आशा से या दुखी होकर या विरक्त होकर, एक बार जब देखता है दिल से, तब इस शरीर में और इस दुनिया में होने पर भी वो ये जान जाता है कि मैं इन पर ही निर्भर हूं, और जहां देख रहा हूं वह आनंद नहीं है, जहां अभी देख रहा हूं परमात्मा की ओर वही सब आनंद है, उन्हीं पर निर्भर हूं, उन पर ही पूरा जीवन आधारित है, ये जानकारी उसको होती है। द अनलिमिटेड एक्सपीरियंसेस ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स ओनली इंक्रीजेस वंस एंग्जाइटी। इतने अनंत भोग वस्तुएं यहां पर उपलब्ध है, क्या लगता है उनको देखकर मजा आ जाएगा? ये मिलेगा तो मजा आ जाएगा, ये मेरा नहीं है फिर भी मिलेगा तो मजा आ जाएगा, हाँ ये पति मेरा नहीं है लेकिन फिर भी उससे भोग करूंगा तो आनंद आएगा, ये पत्नी मेरी नहीं है किसी और की लेकिन मुझे मिलेगी तो आनंद आएगा। ऐसे मन आपको बार बार 100 बार 1000 बार बताएगा, जो आपके अधिकार में नहीं है, जो आपके अधिकार में है या नहीं है, दोनों के विषय में मन आपको बताएगा एंजॉय ये आपके लिए है, ऐसा मन आपको बताएगा। लेकिन क्या होगा उससे, जैसे ही आप विचार करोगे तो ठीक है, कलयुग में विचार करने के लिए कोई पाप नहीं है। अगर विचार करने के लिए पहले जैसा पाप होता, द्वापर जैसे, सत्य जैसे, त्रेता युग जैसे, तो हम लोग सदैव नरक में ही निवास करते कलयुग के जीव सदैव, क्योंकि कितने भी हम लोग सोलह माला करेंगे, जप करेंगे, भक्त बनेंगे, मन तो मन अपना लेवल पे कोशिश कर रहा है बंदर की तरह आपको खींचने का। तो कहते हैं कि जैसे ही ये विचार के आगे हम कृति करने का प्रयास करते हैं, एक कदम उठाते उस पर, हाँ तब तक आप सुरक्षित हो कलयुग में, क्योंकि मन के विचारों के पापों के लिए आपको माफी है कलयुग में। कितना बड़ा डिस्काउंट दिया आपको हमको। लेकिन जैसे ही उस दिशा में कोई पहला कदम उठाता है तो क्या होता है, एंग्जाइटी, उसके बाद में सफरिंग, उसके बाद में क्लेश उत्पन्न होता है। हमारा अधिकार का होगा तो फिर भी थोड़ा ठीक है, उतना पाप नहीं है, लेकिन जिस दूसरे के अधिकार की वस्तु को भोगने का जब हम प्रयास करने के लिए पहला कदम उठाते हैं तो वहीं से क्लेश, कष्ट, दुख, यातना, पीड़ा शुरू हो जाती है। कितना आश्चर्यकारक चीज है कि जो चीज निश्चित रूप से आपके भयंकर दुख का कारण बनने वाली है वही आपको हमेशा मोहित करती रहती है, अट्रैक्ट करती रहती है। हाँ जस्ट सी, जो विष आपको मार देने वाला है वही विष की ओर हम लोग बार बार आकर्षित होते रहते हैं। को बताया गया ये विष है, इसके मत जाओ इसके ऊपर, फिर भी जीव जो है ना, कितनी आश्चर्य की बात है ये। मैं ये कह रहा हूं लेकिन मेरे लिए भी ये चैलेंज है, हमेशा मेरा मन उसी दिशा में जाता है हमेशा, और बार बार मुझे मन को समझाना पड़ता है, नो 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 नो, रोज का संघर्ष है। चाहे फेस्टिवल में हो, आउट ऑफ फेस्टिवल में हो, नॉर्मल ड्यूटी में हो, इंडिया में हो, बॉम्बे में हो, बॉम्बे के बाहर हो, रोज का स्ट्रगल है ये। बार बार मन ऐसा नॉक कर रहा है, देखो उस तरफ, देखो कितना अच्छा वस्तु है, वो आपके लिए है, क्यों नहीं उसको एंजॉय करते आप? आपकी पोजीशन है, आपका अधिकार है, आपका इन्फ्लुएंस है, आपका ये है, आपका वो है, आपको मिल सकता है, ट्राइट, ऐसे बोलते रहते हैं। तो आपको बार बार नो 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 ऐसे करके एक तमाचा मारना पड़ता है मन को। तो यहां पर भक्ति सिद्धांत जी बता रहे हैं कि केवल प्रयास करने से, अभी भोग भी चालू नहीं किया है, प्रयास करने से उस दिशा में भी दुख शुरू हो जाता है। और दूसरी जगह पर भगवान का जैसे ही आप संपर्क करते हो, यहां विषयों से करते हो ना, दुख का कारण बन जाता है, और वे यहां भगवान से करते हो, मुड़ के भी देखते हो उनकी ओर, आनंद की शुरुआत होती है। इमीजिएटली ब्रिंग्स वंस टू प्लेटफॉर्म ऑफ पीस, ऑल एजिटेशन होता है ना, वो क्या कहते हैं उसको, उद्वेग, उद्वेग शांत हो जाता है, मन भी शांत हो जाता है, आनंद का अनुभव करने लगता है। दस वन हु इज इंटेलिजेंट रिटायर्स फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ मैटर एंड बिकम्स फुल्ली सेल्फ रियलाइज्ड कृष्ण कॉन्शियस पर्सन। इसी प्रकार से एक सामान्य जीव जो है वो कृष्ण भावना भावित होने पर क्या करता है, ये जो भौतिक वस्तुओं से भरी दुनिया है इससे अपना मन हटा लेता है। मैटर मतलब जो भौतिक जड़ वस्तु है ना, जो कभी भी सुख देने वाले नहीं है, उससे अपना मन को हटा लेता है। वो कैसा है ना, हमारे मन में एक होप रहती है, होप कि आज तक मैंने इतने वस्तुओं का प्रयास किया भोगने का, नहीं मिला, लेकिन आगे भी बहुत वस्तु है ना जो मैंने ट्राई नहीं किया अभी, आई हैव नॉट ट्राइड दोज थिंग्स, हो सकता है उसमें मिलेगा, हो सकता है ये पत्नी से आनंद नहीं मिला, दूसरी पत्नी से शादी करूंगा तो मिल जाएगा शायद, अच्छी कुंडली मैच करूंगा तो ठीक हो जाएगा सब ऐसा मन बार 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 बताते रहता है हमको। चलो तो ये दुकान का जिलेबी खाया तो 10 लग गए, लेकिन और अच्छी दुकान में, फाइव स्टार दुकान में जाके ए ग्रेड जो होता है ना, क्या कहते हैं उसको, स्टार, थ्री स्टार अगर जाएंगे वो जो इंडिया के लिस्ट में फर्स्ट 10 में आता है तो अच्छा रहेगा मेरे लिए वो, ऐसा हमको भ्रम मिलता है। और भौतिक दुनिया कैसी रहती है ना, भौतिक दुनिया बहुत ही क्या बताऊं, बहुत चालू रहती है, बहुत चालू। क्यों? जैसे आपको अगर किसी को ड्रग एडिक्ट व्यक्ति को ड्रग बेचना है तो पहला क्या करेगा वो, चॉकलेट में डाल के आपको फ्री में देगा। वाह, फ्री में भी है मजा भी आ रहा है, लेकिन फ्री में भी है मजा भी आ रहा है, ले लिया आपने और आपको दोबारा चाहिए तो डबल पैसा लेता है आपसे, और इसके आगे फिर डबल पैसे में बेचता है आपको, चॉकलेट का दाम से डबल पैसे में बेचता है। उसी तरह से भौतिक दुनिया क्या करती है, पहले आपको आओ कम 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 ऐसे कम कम ऐसे करके पहली बार आपको थोड़ा सा आनंद दे देती है, थोड़ा बहुत सुख मिल जाता है, और एक बार वो सुख में आप चिपक गए ना फिर उसके बाद फटका मारना शुरू कर देते तुरंत ही। दिस इज हाउ द वर्ल्ड इज। ओम अज्ञानति मिरंदस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया। तो ये चैप्टर जो है ना श्रीमद् भागवत का, ये उद्धव जी को भगवान गीता सुना रहे हैं, उसको कहते हैं उद्धव गीता। एक गीता अर्जुन को सुनाई है जो हम लोग सब लोग दुनिया में बांटते रहते हैं, उसमें समय बहुत कम था, प्रसंग पूरा बाका था, है ना, युद्ध का प्रसंग था, बहुत समय कम था उसमें, ज्यादा संक्षेप में समझाने का स्कोप था। लेकिन उद्धव गीता जो है वही सब चीजें उसके अंदर अलग भाषा बस शब्दों में अलग बताया उसको, लेकिन उसका सार वही है। ये जो बताया गया है ये भगवद गीता में 18वें अध्याय में है, कर्म संन्यास योग में है, जिसमें विरक्ति का बीज का वर्णन किया गया है, उद्धव गीता में भी है। लेकिन उद्धव गीता का ये विशेष है कि वो आराम से बताई गई है। उद्धव जी बहुत दुखी थे कि भगवान अभी जाएंगे, वो बहुत बुद्धिमान थे ना, भक्त है ना, वो ऐसे देख के समझ जाता है कि हाँ अच्छा शायद इसके पीछे ये चीज है। आध्यात्मिक व्यक्ति जो होते हैं ना वो जब जप करते हैं भगवान के नाम का, तो आम लोगों को जो दिखता है ना उसके ज्यादा उसको दिखता है, उसके परे भी वो पढ़ सकता है। आप पढ़ रहे हैं दो लाइन के बीच में भी वो पढ़ सकते हैं क्या उसका मतितार्थ है। तो वैसे उद्धव जी देखते हैं कि लगता है भगवान ना भी जाने वाले हैं, प्लानिंग कर रहे हैं जाने का, नहीं तो ऐसा ऐसा नहीं करते वो, ऐसा ऐसा किया मतलब वो शायद जाने वाले हैं, बहुत चतुर होते हैं वो। भगवान को जाके बोलते हैं, भगवान भी बोलते हैं हाँ मैं जा रहा हूँ, यू आर राइट। तो कहते हैं मैं नहीं रह पाऊंगा आपके बिना, नहीं रह पाऊंगा, आप जहां जा रहे हैं वहां मुझे लेके जाओ, आपके साथ में आपकी सेवा में रहूंगा, लेकिन आपके साथ में मैं बिना नहीं रह सकता हूँ। तो भगवान कहते हैं नहीं आपको रहना पड़ेगा इधर, अभी जिसको जो चीज़ करनी है उसके विपरीत करने के लिए कन्विंस करना है तो क्या करना पड़ेगा, काउंसलिंग करना पड़ेगा ना, थोड़ा समझाना पड़ेगा कि देखो ये करने से ये कितना अच्छा है, ये यहाँ से ये करने से आपको ये लाभ होगा, ऐसे करने से ज़्यादा अच्छा होगा, आपका मन तो नहीं मानेगा लेकिन आपके आत्मा के लिए कल्याण के लिए अच्छा है। तो वो उद्देश्य से उनको वो उद्धव गीता सुनाते, उसमें कोई युद्ध का प्रसंग नहीं था इसलिए उन्होंने एकदम इत्मीनान से उनको सुनाया है। बहुत सुंदर है, 11वें स्कंद में उद्धव गीता पढ़ने लायक है, और बहुत सुंदर उसका अनुवाद और तात्पर्य भी दिया गया है। तो इसमें अभी विशेष रूप से भगवान उनको विरक्ति की बात बता रहे हैं। ही इज टीचिंग उद्धव द साइंस ऑफ विरक्ति, रेनन्सिएशन। तो बहुत ऊंचा विषय है वो, बहुत ऊंचा विषय है। जैसे मैं आपको बताता हूँ भौतिक दुनिया कैसी है और ये विषय कहाँ पर है। हाँ, मेरा ना आत्मा सीरियल में लेक्चर चलते थे बहुत पहले, गौरांग प्रभु और बहुत सार्वभौम प्रभु और देवकीनंदन प्रभु, हम लोग सब लोग आत्मा में क्लास देते थे, और वो कलर स्टार प्लस में कई साल तक रिपीट हुआ उसका, 5 साल तक। तो उसमें मैं एक बार 18वें अध्याय पर एक श्लोक पर प्रवचन कर रहा था, और 18वें अध्याय जो है ना वो केवल बाह्य विरक्ति नहीं है कि भाई शर्ट पैंट पहनना छोड़ दो, धोती कुर्ता पहनो, विरक्त हो जाओ, मूंछ निकाल दो, है ना, ये तो जलेबी मत खाओ, मीठा मत खाओ, तला हुआ मत खाओ, ज्यादा ओपुलेंट मत खाओ, सिंपल खाओ, ये भी विरक्ति है, लेकिन ये बाह्य विरक्ति है, बहुत फर्स्ट ग्रेड की विरक्ति है, ये करने से आप बहुत विरक्त नहीं हो जाते। तो वो श्लोक में क्या विषय था कि विरक्ति का बीज क्या है, बीज, व्हाट इज द सीड ऑफ रिनन्सिएशन। क्या बता रहे थे उसके अंदर कि विरक्ति जो है ना वो इसमें चीज में है, गिविंग अप ऑफ प्रोप्राइटरशिप, कि मैं स्वामी हूं, ये चीज, ये नोटबुक मेरी है, ये घड़ी मेरी है, ये पैंट और शर्ट मेरा है, ये कुर्सी मेरी है, ये स्वामित्व जो है ना उसको छोड़ देना और भगवान का उन चीजों पर स्वामित्व स्वीकार करना, ये बीज के बारे में चर्चा चल रही है। आपको समझ में आया? जैसे कि ये मेरी पत्नी है, मैं शादी किया उसके साथ में, मैंने भोग भी लिया है, मैं बच्चे भी पैदा किए, ये पैसा मेरा है, ये घर मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, हाँ ये ऑफिस में ये कुर्सी मेरी है, ये डिपार्टमेंट मेरा है, मैं इसका स्वामी हूं। ये स्वामित्व की भावना नंबर वन त्याग कर देना, नंबर टू इसका स्वामित्व भगवान को देना। आपने छोड़ तो दिया है ना, लेकिन किसी और ने लिया तो नहीं नहीं नहीं, नहीं क्यों ले रहे हो तुम, मैंने छोड़ा है लेकिन आपको नहीं लेना है उसको, ये भी एक प्रॉब्लम है ना। तो भौतिक दुनिया क्या कर रही है, मैं अभी ये क्यों बता रहा हूं, ये सब मैं वो टीवी पे लेक्चर पे समझा रहा हूं। और फिर भौतिक दुनिया क्या करती है, उसके बीच में आता है इंटरवल, ऑफिशियल इंटरवल आता है ना वो एडवर्टाइज के लिए, तो उसमें मैंने खुद देखा मेरा प्रवचन टीवी पे, तो क्या ऐड आया बीच में, एक लेडी आती है अपने कपड़े ऐसे उतार के फेंक देती है और नदी में स्नान करने प्रवेश करती है और फास साबुन की एडवर्टाइजमेंट हो रही है। तो क्या मैं बता रहा हूं, मैं देखे दंग रह गया, मैं क्या बात कर रहा हूं और कौन सी ऐड चल रही है उधर। कम से कम भाई बटाटा वटा का ऐड करते ठीक है, भाई चिवड़े का ऐड करते, भाई होटल का ऐड करते ठीक है, मैं विरक्ति के बीज की चर्चा कर रहा हूं और एक स्त्री आके, सुंदर स्त्री अपना कप वस्त्र उतार के नदी में प्रवेश करती। तो भौतिक दुनिया ऐसे ही करती है, आप चाहते हो कि इसको समझे और भौतिक दुनिया उसी समय आपको ऐसा चीज सामने दिखते देते ना कि भाई छोड़ो ना इसको यार, वो सामने आया उसको ले लो, ये तो बहुत बाद की बात है, देख लेंगे उसके बाद में, विल वर्क ऑन दिस, राइट नाउ मेरे सामने ये चीज अवेलेबल है, ले लो उसको। भाई डायबिटीज आपको है, आपको नहीं खाना है शुगर की वस्तु, बता दिया है ये नहीं खाना है वो नहीं खाना है, और सामने एकदम घी में तली हुई गरम गरम जलेबी आ रही है, बोलेंगे ये गोली ज्यादा खा लेंगे उसमें क्या है रे, खा लो जलेबी उसको भी, यू नो ये भौतिक दुनिया है, दिस इज द नेचर ऑफ मटेरियल वर्ल्ड। और ये शोर शॉट है, इस चोर को पता है मैं चोरी कर रहा हूं तो पुलिस आएगी आएगी, लेकिन फिर भी वो चोरी करना छोड़ता है क्या, वो जो वस्तु उसके सामने है ना वो उसको बिना चोरी किए छोड़ नहीं सकता है उसको, ही जस्ट कैनॉट। तो बंदर को मालूम है कि मैंने वो मटके में हाथ डाला ना और चने मुट्ठी में ले लिए तो मुट्ठी चने से भरी हुई उससे बाहर नहीं आ सकती है, फिर भी वो चना छोड़ नहीं सकता है, और वो चना पकड़ के रखा है तो बंदर को पकड़ने वाला आदमी आता है उसको पूरा बांध के अरेस्ट करके लेके जाता है, और फिर भी क्या करता है पता है, वो मटका अंदर मुट्ठी चने से भरी हुई मटके के साथ उसको लेके जाता है, वो उसको अरेस्ट कर लेता है, जस्ट इमेजिन सो फनी इट इज। तो बंदर को कैसे पकड़ते हैं, बंदर को उसकी जो कमजोरी है ना उसी पर पकड़ते हैं। तो भौतिक दुनिया हमको कैसे पकड़ती है, हमारी कमजोरी में ही पकड़ती है, जहां पर हमारा स्ट्रेंथ है ना वहां पर नहीं आती वो। और आपको और हमको नहीं पता होगा कि हमारी कमजोरी किसमें है, आपको लगता होगा ये तो मेरी कमजोरी है ही नहीं, लेकिन माया को बराबर पता होता है कि कहां पर आपकी कमजोरी है, और वहीं पर वो ऐसे ना नमक कहां छेड़ते हैं, वो जख्म के ऊपर ही छेड़ते हैं, चमड़ी के ऊपर नहीं फेरते, जहां जख्म है खून बह रहा है उधर ही नमक छेड़ते, उसी तरह से माया का प्रभाव है। तो क्या करें अभी, क्या करें अभी, उद्धव जी को भगवान ने तो बता दिया, वो तो सुन लिया उसने, विरक्त हो भी गया वो, हमारा क्या होगा, हम लोग 11वां स्कंद पढ़ लेंगे, उद्धव गीता पढ़ लेंगे, सब कुछ प्रवचन भी देंगे, आप सुनेंगे भी, मैं बोलूंगा भी, मैं सुनूंगा आप बोलेंगे, सब हो गया, अरे कब लेकिन आएगा वो, कैसे आएगा आचरण में, इतनी दुनिया में हम रह रहे हैं ना इधर, क्या कदम कदम पे ऐसे आकर्षण है। आज सुबह मैं उठा और मन में तय किया कि आज नहीं करना है ये सब काम, और नहीं करके ऐसे जप करके बाहर निकला, बाहर निकलते सामने ही वही वस्तु जो मैं छोड़ना चाहता हूं आज, मतलब विचार करके निकला वही सामने वस्तु है विच आई डोंट वॉन्ट। तो अगर हमने सुबह अच्छा जप किया होगा तो उस वस्तु को देखने पर भी आप तुरंत अपनी नजर को हटा सकते हैं, मन को बोल सकते हैं नो आपको नहीं देखना है उसको, और जब कमजोर किया होगा तो आप एक बार दो बार तीन बार 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 देखेंगे, यही है रोज का संघर्ष। और ये संघर्ष जब हम कर रहे हैं तो कभी शायद यशस्वी हो जाएंगे, कभी शायद फेल हो जाएंगे, करने में नहीं देखने में। लेकिन आप जब प्रयास करें ना, वो प्रयास भी देखकर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। आप अगर मन में बोल रहे हैं नो ये मेरी भोग्य वस्तु नहीं है, ये किसी और की भोग्य वस्तु है, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। कम से कम आप लिप्त तो मतलब हो रहे हो, अट्रैक्ट हो रहे हो, आकर्षित हो रहे हो, लेकिन कुछ कर नहीं रहे हो उसके ऊपर। जैसे बालक है, कुछ चॉकलेट बहुत अच्छा लगता है, वो चॉकलेट देखकर आकर्षित होता है लेकिन खाता नहीं है, तो मम्मी बोलते ना गुड बॉय, गुड बॉय। किसी का पेंसिल और इरेजर उसको चोरी करने की आदत है और आपने कल उसको पट्टी मारी अच्छी तरह से, आज भी वो देख रहा है रबर और पेंसिल, लेकिन आज वो चोरी नहीं कर रहा है। माँ बोलते थैंक यू वेरी मच, गुड बॉय, आपने आज बहुत सारे सुगंधी रबर देखे लेकिन कोई चोरी नहीं की आपने, घर पे आके उसको कुछ मिठाई खिलाएगी प्रेम से। वैसे ही भगवान है हमारे। तो यश मिलेगा या ना मिलेगा ये तो आप भूल ही जाओ, क्योंकि भौतिक विषयों पर विजय प्राप्त करना तो बहुत ही नामुमकिन जैसी बात है। तो भगवान ही आपको उससे बचा सकते हैं। किसी भी भौतिक वस्तु के आकर्षण से बचना है तो भगवान की कृपा ही बचा सकती है। हमारा कोई प्रयास, हमारी कोई साधना, हमारा कोई तपस्या, हमारा कोई व्रत, हमारा कोई दान धर्म दर्शन पुण्य नहीं बचा सकते, क्योंकि हम लोग कितना भी दान पुण्य व्रत करेंगे ना तो भी बहुत इनसिग्निफिकेंट होता है, वो तुच्छ होता है। इट इज नॉट सफिसिंग, इट इज नॉट सफिशियंट टू कम ओवर दोज अट्रैक्शंस। एक ही व्यक्ति है जो हमको इससे बचा सकता है, वो है श्री कृष्ण भगवान, और उनके प्रतिनिधि के रूप में उनके गुरु जी। जब उनके गुरु, उनके प्रतिनिधि गुरु जी हमारे हम पर कृपा करते हैं, तो जब तक हम उनके नियम में है, नियम के दायरे में अपने जीवन को बिता रहे हैं और वो हमसे प्रसन्न है, तब तक आप इन वस्तुओं के आकर्षण से मुक्त रह सकते हैं। जिस दिन आपने तय किया कि मुझे आज गुरु के आज्ञा पालन नहीं करना है, उसी दिन माया आप पर निकटस्थ माया तारे झापटिया धरे। शत्रु कैसा है ना, वो मराठी बोलता ना, दबा धरून बसलेला असतो, लपून बसलेला असतो, पण तुम्हाला बघत असतो कॉन्स्टंटली। छुपके आपके सामने रहता है वो, लेकिन आपको दिखाई नहीं पड़ता है, ऐसा छुपके रहता है वो, वेट करता है कि चलो बलवान व्यक्ति का सहारा लिया इसने, ठीक है। जिस दिन उसकी वो हाथ पकड़ा है ना, बलवान आदमी का हाथ पकड़ा है, वो पकड़ ढीले हो जाएगी ना, वो उधर खड़ा है तुरंत आपको खींचने के लिए। आप इतने सतर्क नहीं होंगे, हम नहीं होंगे सतर्क इतने, लेकिन वो जो शत्रु हमारा है ना, वो बहुत सतर्क रहता है, ऑलवेज अलर्ट 24/7 ऑन कॉल। सपनों में भी ऑन कॉल रहता है वो, सपनों में भी आपको ऐसा वातावरण निर्माण करेगा कि उधर भी आप गिर सकते हो। जो दिन में आपने जागृत अवस्था में ना बोला है उसको, वो सपने में आप भोग सकते हो। लेकिन जिसका निश्चय हो गया ना कि नहीं, वो सपने में भी उसको नहीं बोलेगा, क्योंकि आई हैव डिसाइडेड टू से नो टू दिस। सपनों हुआ तो क्या हुआ, मेरा अभी स्वभाव बन गया है, सपनों में भी आएगा तो मैं उसको ना बोलूंगा। तो इसका उपाय भक्ति सिद्धांत जी बताते हैं कि कृष्णमय होना, यही उसका उपाय। और कृष्णमय होना नहीं, निरंतर कृष्णमय रहना, निरंतर कृष्णमग्न रहना, निरंतर भगवान की लीला में मग्न रहना, उसके विचार में, उसके बोलने में, उसको सुनने में, निरंतर। मुमकिन है क्या ये? आप तो ICCU रजिस्ट्रार क्या कोऑर्डिनेटर है, इंचार्ज है, कोई इमरजेंसी में काम करते हैं, कोई ऑपरेशन थिएटर में काम करते हैं, कैसे करना है इसको? तो भगवान कहते हैं माम अनुस्मर युद्ध च। ऐसा नहीं कि अर्जुन ने एक हाथ में माला लेके एक हाथ में बाण चला रहे हो, पर माला पूरी नहीं हो गया, आज सुबह से माला कर रहा हूं, एक हाथ में माला लेके, या तो पूरी हो गया लेकिन फिर भी मेरे को कॉन्स्टेंटली कहा गया है कि भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए, तो माला लेके कर रहा है और युद्ध नहीं कर रहा है, एक हाथ से कोशिश कर रहा है धनुष चलाने का। हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग बोलते हैं ना कि ये चादर को यहां से वहां करना है, तो वो क्या करेगा, एक हाथ में माला रखेगा, एक हाथ लेफ्ट हैंड से उसको एडजस्ट करेगा, लेफ्ट हैंड से माइक्रोफोन को ठीक करेगा, और एक हाथ से हरे कृष्ण करता रहेगा, लेफ्ट हैंड से बास्केट को उठाएगा, एक हाथ से हरे कृष्ण करता रहेगा, है ना। ये सब नहीं बताया भक्ति में भगवान ने, बताया माम अनुस्मर युद्ध च, मतलब दोनों हाथ से करो युद्ध, आप मन में मेरी याद करो, मेरे लिए युद्ध करो। तो ऑपरेशन थिएटर करेंगे तो एक माला कर सकते कैसे हाथ में, और सेकंड हाथ से स्काल्पेल चला सकते क्या? नहीं चला सकते। प्रोसीजर कर सकते क्या? खाना बना सकते ना, औरत लोग कैसे एक हाथ में हरे कृष्ण एक हाथ में ऐसे, वो सब मिक्सचर है पूरा, एक समय एक काम करना चाहिए और दिल से करना चाहिए। और भगवान का नाम का जब दिल से करने के बाद में जब सेवा करने का मौका आता है तो भगवान के लिए भगवान की याद में उस कार्य को करते रहना चाहिए, कॉन्स्टेंटली रिमाइंडिंग कि मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूं, मेरे भोग के लिए नहीं कर रहा हूं। तब दोनों काम एक बराबर है, जप के बराबर ही वो कार्य है, उसके बराबर ही जप है। लेकिन वो दूसरा कार्य बराबर करने के लिए जप पहले बराबर करना पड़ेगा। बिगिनिंग इज जपा, बिगिनिंग में अगर जपा ठीक से करेंगे दूसरा वाला काम जो कर रहे हैं बहुत इंटेंस काम कर रहे हैं वो भी जप के बराबर ही उसी लेवल का हो जाएगा। तो अभी इसका सार क्या है, व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड इट, कॉन्शियसनेस, परपोर्ट में बताया, चेतना, कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण चेतना, कृष्ण भावना। जब तक आप विकसित नहीं करते हो तब तक ये तो किताब में ही रहेगा, ये विरक्ति, ये क्या डिटैचमेंट और ये रेनन्सिएशन, ये सब इधर ही चर्चा के लिए बढ़िया है, बुधवार के मॉर्निंग में अच्छा चर्चा किया, बाद में अपना अपना अटैचमेंट के लिए हम लोग फ्री है। तो यही अपने जीवन का लक्ष्य है। बाहर से लोगों को लगेगा कि हम बहुत एडवांस्ड हैं, लेकिन अंदर से जो संघर्ष चल रहा है वो हमें और परमात्मा को पता रहता है। और बाहर से आप लगेंगे बहुत पतित है, एकदम ऑर्डिनरी है, लेकिन अंदर से गुरु और कृष्ण को प्रसन्न कर चुके हैं और बहुत विरक्त है अंदर से, ये भी भगवान ही जानते हैं। तो इसलिए हमारी जो कृष्ण कॉन्शियसनेस है, कृष्ण चेतना है, इसकी प्रगति के विषय में दुनिया को पता चले या नहीं पता चले, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि मैं कितना एडवांस्ड हूं, ये आपको पता होना चाहिए। डू यू नो मी हु आई एम, कोई जरूरत नहीं उसकी, क्योंकि आप में से और हमारे में से कोई लोग मेरे मृत्यु के समय रहेंगे नहीं रहेंगे कोई गारंटी नहीं है, लेकिन एक बात निश्चित है, भगवान या यमदूत निश्चित रहेंगे वहां पर, उनको पता होना चाहिए आप कौन हो। उनको अगर नॉलेज है इस बात का और उनको होगा नॉलेज आपके चेतना का, तो उसमें से एक हट जाएगा एक सामने रहेगा आपके, दोनों में से एक रहेंगे रहेंगे अपनी चेतना के अनुसार। तो फाइनली दुनिया के लोगों को अपने कृष्णा कॉन्शियसनेस की प्रगति से इंप्रेस करने का प्रयास करने की कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। सूरज आने के बाद में उसका प्रकाश सबको मालूम पड़ता है, और बादल से ढक भी गया तो भी सूरज को फर्क नहीं पड़ता है ना, बादल से ढकता है ना, अभी बारिश किधर से, सूरज तो दिखना ही पड़ रहा है, लेकिन बादल से ढकने पर भी दिन का प्रकाश सब जगह है ना, अभी भी आपको दिखाई पड़ रहा है, दिन आ गया है, उजाला हो गया है। तो प्रयास करने की जरूरत नहीं सूरज को, ये हटो हटो बादल हटो, अरे मैं आ गया हूं हटो, मेरा किरण जब तक पृथ्वी पर नहीं पहुंचता है लोग रिकॉग्नाइज करें करेंगे दिन हो गया शुरू करके, सूरज परवाह नहीं करता है, सूरज अपना काम करते रहता है रेगुलरली 24/7, उसका चक्र जो है चलते रहता है, नो रेस्ट, नो सीएल, नो पीएल, नो सिक लीव, नथिंग। हनुमान जी को पढ़ाया उन्होंने, पूरा वेद पूरा ज्ञान दिया, वो भी चलते चलते ही दिया उन्होंने, नो हॉल्ट। ऐसे ही निरंतर हमको चलना चाहिए, चरै वेति, चलते ही रहना चाहिए भक्ति भक्ति के जीवन में। और जो भी हमारा अंदर का यात्रा है, हाँ, इंटरनल जर्नी जो है ना हमारा, वो भगवान और गुरु को पता रहता है, कोई उसका शो करने की जरूरत नहीं। लेकिन जब तक वो कृष्ण भावना का विकास नहीं होता है तब तक हम ना विरक्त हो सकते हैं, ना भगवान से आसक्त हो सकते हैं, ना सेवा कर सकते हैं, ना भौतिक दुनिया के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं, ना क्लेश और पीड़ा से मुक्त हो सकते हैं। चलो तो भगवान की आ सकते तो बात की बात है, क्लेश जो हो रहा है उसको तो मुक्त होना है ना आपको, वो भी नहीं होगा। इसका वो पेनेशिया क्योर है, सर्व औषधि है वो, एनएचए औषधि, सर्व औषधि क्या है, कृष्ण चेतना, कृष्ण भावना, उसी पर काम करना है हमको। और जब वो उस पर काम करेंगे हम, तब ये सारी बातें हमको रेलेवेंट लगेगी, हाँ भाई इसमें कुछ मतलब है, ये जीवन में मैं उतार सकता हूँ, लगता है उतार सकता हूँ, उतारने का कोई चांस है इसके अंदर, किताब में रहने वाली बातें वो, ऐसा आपको अनुभूति होगी। इसलिए कोई हाई फाई पुराण या उपनिषद या कोई ग्रंथ निकाल के पढ़ेंगे तो एडवांस हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। एडवांस तब होंगे जब ए बी सी डी अच्छी तरह से करेंगे, चैंटिंग अच्छी तरह से करेंगे, भगवान के भक्तों का संग अच्छी तरह से करेंगे, शास्त्र अच्छी तरह से पढ़ेंगे, भगवान का दर्शन करेंगे, हाँ धाम में जाएंगे, इन्हीं बातों को और अच्छी तरह से और गहराई से और दिल से करेंगे, उसी में सब कुछ है। हमेशा मुझे याद आता है, जब भी कोई बैट्समैन इंडिया का अच्छा परफॉर्मर लगातार जब होता था ना फेल, तो वो तेंदुलकर को मिलते थे। तेंदुलकर क्या बोलता था, पहले वापस एक बार क्रीज में जाकर खड़े रहेंगे और स्टैंड्स लेंगे, हाउ टू स्टैंड ऑन द क्रीज। जो एकदम पहली बार एकेडमी ज्वाइन किया ना क्रिकेट का, उसको पहले से खड़ा रहना सिखाते हैं, बैट लेके क्रीज पे दोनों पैर में कितना अंतर रख के कहां पैर रख के खड़ा होना है। तो बड़े बैट्समैन लोग क्या मुझे सिखा रहे हो एबीसीडी, बोले यही शुरू करना है, वो गलती उधर ही होती है। आपने अभी बहुत दिनों के बाद में खड़ा रहना भी गलती करना शुरू किया, आपको पता भी नहीं है कि आप रॉन्ग खड़े रहते हो, इसलिए बार बार आपके विकेट गिरती है। दिस इज अ फैक्ट, वेरी वेरी इंप्रेसिव स्टेटमेंट विच द क्रिकेटर हैज ऑलवेज टोल्ड, गो बैक टू बेसिक्स ऑलवेज। और उसमें कोई आपको संकोच नहीं होना चाहिए, मैं तो 25 साल का डिवोटी हूं, आप क्या बोल रहे हो मुझे जब करने को सिखा रहे हो, उसी में गड़बड़ होती है। और 25 साल के बाद में क्या होता है, वो गड़बड़ तुरंत समझ में नहीं आती है और किसी ने बताया तो सहन नहीं होती है। नया व्यक्ति है 6 महीने पहले, उसको आपने बताया ना ये भैया ठीक नहीं जब कर रहे हो, तो हाँ प्रभु जी कैसे करूँ बताओ जरा, एकदम नम्रता से एक्सेप्ट करेगा वो। 25 साल के डिवोटी को जाके बोलो, टेम्पल प्रेसिडेंट को जाके बोलो, प्रभु जी आप ना सो रहे हो जब करते समय, एक तो आपको बोलने की हिम्मत नहीं होगी और बोलोगे तो क्या होगा उसका पता नहीं आपको, है ना। तो डेंजरस क्या है कि आपने अगर आपको लगा कि मैं 25 साल बिता चुका हूं कृष्ण भक्ति में, तो लोग आपको बोलने में संकोच करते हैं और आपको सुनने में भी तकलीफ होती है, बहुत बड़ा तकलीफ है ये। लेकिन सब लोगों का कृष्ण भावना के प्रगति में प्रॉब्लम्स केवल बेसिक में ही होते हैं, जब ठीक से नहीं होता है, अटेंटिवली नहीं होता है, माला एक मंत्र के बाद फेरने के बजाय 2 मणि फेर देते हैं, अंदर कौन देखता है फीडबैक में, कौन वीडियो रखा है अंदर, फीडबैक के अंदर वीडियो कैमरा रखा है कि वो एक मणि एक मंत्र में 4 मणि को आगे कर रहा है, कौन देख रहा है उसको, नोबडी इज लुकिंग एट दैट। आपको ही पता है, कभी आपको पता नहीं होगा शायद, माला गिर गई होली के अंदर, उसी को वहां से उठाते हो चालू करते थे, कितने लोग करते हैं उसे, मैं भी करता हूं लेकिन अभी छोड़ दिया मैंने। कहने का मतलब क्या है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम बेसिक में ही होता है, और जब भी आपको जीवन में कृष्णा कॉन्शियसनेस में कुछ समस्या आके कुछ बड़ा दुर्घटना होती है, गो बैक टू ए बी सी डी, देखो ए ठीक हो रहा है क्या, बी ठीक हो रहा है क्या, चैंटिंग ठीक हो रहा है क्या, प्रसादम खा रहे क्या ठीक से आप, के बीच में जो बाहर भी खाते हो, किसी के गैर का हाथ भी खाते हो क्या, इसी पर स्टडी करो। बाद में वो कोई पुराण एकदम हाई फाई पुराण पढ़ा कि नहीं पढ़ा वो बाद में देखो, आप एबीसीडी पे काम करो, आपको सारे उत्तर एबीसीडी में मिलेंगे, आपके आपका पूरा जो चार्ट ना कुंडली आपकी स्पिरिचुअल लाइफ की वो एबीसीडी में मिलेगी आपको, और ये विरक्ति वगैरह का जो काम है ना वो उसी में अटैच्ड है। अगर आपका जप ठीक है तो आप ऑटोमेटिकली एक दिन विरक्त हो जाओगे, अगर आपका जप स्ट्रांग है उसी में आपको श्रद्धा है तो ऑटोमेटिकली आप विरक्त हो जाओगे, धीरे धीरे आप छोड़ दोगे उस चीज को, कोई गुस्सा नहीं आएगा किसी ने अपमान किया तो, वो वस्तुओं को भी छोड़ देंगे ठीक है। अभी बहुत सारे कपड़े अभी पहले मैं सब रखता था, ये मेरी पैंट ये शादी वाली पैंट, ये इसकी वाली पैंट, ये बर्थडे वाली पैंट, सब छोड़ देते उसको, गिव इट अप, अपने आप हो जाएगा वो। और केवल विरक्ति पे काम करने की आवश्यकता नहीं है, विरक्ति भी एक मटेरियल चीज है, डू यू एक्सेप्ट इट। किसी वस्तु को छोड़ देना मतलब क्या, मैंने समझा था कि वो मेरी है इसलिए मैं छोड़ने की बात कर रहा हूं। तो भगवान वो 18वां अध्याय में अर्जुन को बोलते हैं कि छोड़ने के लिए तुम्हारा था ही क्या, पहले छोड़ने के लिए आपका था क्या, वो आपने जो गलती से स्वामित्व का एक भावना बनाया था कि मैं स्वामी हूं, उसको छोड़ दो आप, बस खत्म, उतना ही काफी है। वस्तु आपकी थी नहीं, कोई भी चीज आपकी थी नहीं। तो जब बोलता ना कि मैंने ना अभी मिठाई छोड़ दिया है, ये भी एक प्रकार का अहंकार है। तो बेस्ट वे क्या है, ये विरक्ति के लिए अलग से प्रयास करने का प्रयत्न ही छोड़ दो आप, आप खाली कृष्ण भावना भावित होने का प्रयास करो बस, जस्ट ट्राई टू बी अटैच टू कृष्णा। वो अटैचमेंट के अंदर ही भौतिक दुनिया की विरक्ति छुपी हुई है। तो आप पॉजिटिवली कृष्ण भगवान से अपने आप को जोड़ने का प्रयास करो, कृष्णमय होने का प्रयास करो, कृष्णमग्न होने का प्रयास करो, उसी में लगे रहो, फिर अपने आप है ना वो मुक्ति भुक्ति विरक्ति सब आपके पीछे भागेंगे, फिर भी आप देखेंगे नहीं उनकी तरफ, क्योंकि जिस चीज से आप आसक्त हो गए हो वो इतनी पावरफुल है कि ये मुक्ति भुक्ति और सिद्धि काम ये सब आपके लिए बोलता है, नहीं चाहिए मुझे, इतना आपको आनंद आएगा उसके अंदर। लेकिन अलग से आप विरक्ति का प्रयास करेंगे, आज जीतेंगे कल हारेंगे निश्चित रूप से, क्योंकि माया इतनी प्रभावी है, माया के साथ में क्या युद्ध करेंगे हम, क्या आप कोशिश करेंगे उसके साथ में, नो चांस ऑफ विनिंग, श्योरिटी ऑफ लॉस, हारने का निश्चित है उसके अंदर। लेकिन कृष्ण भावना मृत को प्राप्त करने के बाद में कृष्ण भगवान आपको जिताएंगे, आप नहीं जीतेंगे, कृष्ण भगवान आपको जिताएंगे, आपको विजयी बनाएंगे। इसलिए भक्त जो है ना वो अलग से विरक्त होने का प्रयास नहीं करता है, अलग से त्याग करने का प्रयास नहीं करता है, वो त्याग करने की भावना ही छोड़ देता है, वो कृष्ण से अपना दिल लगाता है। आप गोपियों का जीवन देखो, अभी देख रहे हैं आप गोपियों के जीवन में अलग से व्रत करके त्याग करने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं केवल कृष्ण भगवान की सेवा में दिन रात लगे हैं वो। कोई पढ़ा लिखा गोपी है, पढ़े लिखे गोपी नहीं है, कोई पूर्णमासी है, कोई यशोदा है, कृष्ण की माता है, कोई अकश्चित गोपी गोबर साफ कर रही है, वो सारी गोपियां सारे ब्रजवासी मिलकर केवल भगवान में अपना दिल लगा चुके हैं। इसलिए बड़े बड़े तपस्वी भी उनके सामने हार जाते हैं कि इनका विरक्ति क्या है, उनको कृष्ण के सिवा कोई है ही नहीं उनके जीवन में, क्या छोड़ने का कुछ काम ही नहीं है उनके जीवन में, जो भी है सब कुछ कृष्ण है, तो ये छोड़ना है ये रखना है ऐसा कोई सवाल ही नहीं उठता। तो ये सिंपल तरीका है और आसान तरीका है, वो कठोर कठिन तरीका नहीं है। इसलिए ए बी सी डी को पकड़कर कृष्ण भावना को अपनाने का प्रयास करना चाहिए। तो भगवान को, भगवान उद्धव जी को जो बोल रहे ना कि सूरज देखो उसके प्रतिबिंब से अटैच नहीं होता है, आकाश को देखो जिसमें इतने ग्रह तारे हैं उनसे वो अटैच नहीं होता है, ये सब बातें आपको आसान लगेगी, जितना आकाश को आसान लग रही है, हाँ सारे ग्रह तारे अंदर रखकर भी उससे बिल्कुल अटैचमेंट नहीं है, कितना आसान है आकाश के लिए, वैसे आपके लिए भी आसान हो जाएगा। इसलिए दुनिया से जूझने की वजह से, दुनिया से जूझने की बजाय कृष्ण से प्रेम करो और कृष्ण से आसक्त हो जाओ, उससे दोस्ती करो, उसको अपना बना लो, वो आपको अपना बना लेंगे, फिर बाकी का सारा काम जो है ना अचीवमेंट्स माइलस्टोन्स वो अपने आप होते रहेंगे सब। हरे कृष्णा। अगर रथ यात्रा हुआ, हाँ रथ यात्रा हुआ ना कल, जब भी आप उधर रथ यात्रा में डांस कर रहे थे, कोई वस्तु आकर्षित कर रही थी आपको, कोई स्त्री, कोई खाने की वस्तु, कोई ऐसी वस्तु, कोई कुर्सी, कोई पैसा, उस समय आप कृष्णमय थे, दुनिया की सारी वस्तु आपके लिए तुच्छ थी, कृष्ण नाम और कृष्ण भक्ति का आनंद ही आपके लिए सब कुछ था। लेकिन कुछ समय के लिए था, जैसे वो फेवर उतरा फिर जिलेबी आकर्षित करने लगी, फिर देख रहे महाप्रसाद में कौन सा आइटम है जो मुझे चाहिए, जो मुझे लेना है, इसमें से मेरे अधिकार में मुझे लेना है उसको, अब तुरंत ऐसा वो कंट्रोलिंग स्वामित्व आ गया वापस। तो ये आपको पता है, लेकिन हम लोग उसको दिलो जान से प्रयास नहीं करते। जो आता है भगवान की इच्छा से वो हमारा है, नहीं आता है भगवान की इच्छा है, लेकिन भगवान को रिझाना मेरा कर्तव्य। तो जो व्यक्ति इसी भावना में हमेशा व्रत रहता है, हमने देखा है बाय द वे, आई हैव सीन पीपल लाइक फॉर एग्जांपल हिज होलीनेस देवामृत स्वामी, उनको भी, उनको मैंने चलते हुए बोलते हुए जाते हुए देखा है कैसे वो हमेशा भगवान का नाम गुनगुनाते रहते हैं। आप प्रश्न पूछेंगे तो उत्तर देंगे, आपका प्रश्न का उत्तर समाप्त होगा तुरंत उनकी धुन चालू हो जाती है तुरंत। सो ऐसा नहीं है कि हमने इस जीवन में इस शरीर में रहते हुए ऐसे व्यक्तियों का दर्शन नहीं किया है, दुनिया में ऐसे भी आज भी लोग हैं जो हमेशा कृष्णमय रहते हैं, कॉन्स्टेंटली कृष्ण कॉन्शियस। तो वो बता रहे हैं कि ये मुमकिन है, नामुमकिन नहीं है, आप थोड़ा बहुत प्रयास तो करो फिर आगे आपको उसका अनुभव आएगा। इसलिए भक्ति वेदांत में कैसा है, यही भाग्य है हमारा कि यहाँ पर पेशेंट को देखते हुए, ऑपरेशन करते हुए, आईसीयू का पेशेंट को देखते हुए, बिलिंग बनाते हुए और कोई बच्चा को जन्म देते हुए आपको ये मौका है कृष्ण भावना भावित होकर वो काम करने का, टू डू इट फॉर कृष्णा एंड टू डू इट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, खुद के लिए नहीं, ये आपको मौका है, हमको सबके लिए मौका है, उसको मौका लेना चाहिए, नहीं तो बहुत जल्दी रिटायरमेंट का समय आएगा और निकल जाएंगे हम, है ना, रिटायरमेंट का समय तो आएगा सबके लिए, एवरीबॉडी इज गेटिंग ओल्ड, उसके पहले ये पूरा लाभ लेना चाहिए। बहुत लोगों को ये लाभ नहीं है, बाहर काम करना पड़ता है दुनिया के लोगों के बीच में और फिर अलग से कृष्ण कॉन्शियसनेस करके उसको सफाई करनी पड़ती है जो गंदगी पैदा हो गई है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, जहाँ काम कर रहे हैं वो भी कृष्ण कॉन्शियस जगह है और घर पे भी कृष्ण कॉन्शियसनेस है, सब जगह कृष्ण कॉन्शियसनेस, खाली लाभ लेना कि नहीं लेना ये हमारे हाथ में, वो हम लेंगे तो हमारा परम भाग्य है, इतना परम भाग्य दुनिया में किसी का नहीं है जितना हमारा है। कदम कदम पर हमारे साथ में सेवा, हमारी कृष्ण कॉन्शियस है, घर के परिवार कृष्ण कॉन्शियस है, घर के वातावरण में कृष्ण कॉन्शियसनेस है, हर जगह पर कृष्ण कॉन्शियसनेस है। जितना हम लोग लेंगे उतना यशस्वी हो जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसको कहते हैं इमरजेंसी लेक्चर इन पैंट शर्ट। बाय द वे हमारे मारुति राव को बताना चाहता हूँ, ऐसे नहीं होता है, आज हमारे स्पीकर नहीं आए इसलिए हम लोग इमरजेंसी में फिर कर लेते हैं। यस कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चन? सब लोग अभी विरक्ति का तो प्रयास करते रहो साथ साथ, लेकिन कृष्ण भावना होने का ज्यादा प्रयास, फिर थोड़ा आसान हो जाएगा हमारा एग्जाम। थैंक यू वेरी मच। श्री प्रभुपाद की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय।